मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 1 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 मार्च से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं शुभम शर्मा, आप मलंगन हिमाचल प्रदेश से हैं, मनोज कुमार खेरी तेलवाना हरियाणा से हैं, विवेक कुमार पटना बिहार से हैं, लक्ष्मी प्रजापति भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, मोहित जोशी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, प्राची अग्रवाल डबरा मध्य प्रदेश से, प्रदीप गिरी सिवान बिहार से और रूपाली शिवाजी दारेकर पुणे महाराष्ट्र से। तो शुभम मनोज विवेक लक्ष्मी मोहित प्राची प्रदीप और रूपाली आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसी के साथ ही एक सूचना भी है छोटी सी जो मैंने कल दी थी, आज मैं फिर से उसको दोहराते हुए संक्षिप्त में आपको स्मरण करा रहा हूं और वह यह कि अभी जो 11 मार्च से क्लासेस शुरू होने वाली हैं उसमें एडमिशन लेने का आज आखिरी दिन है। 1 मार्च आज उसका अंतिम दिन है। दोस्तों सच पूछे तो आज शुरुआत में यह कहते हुए मैं थोड़ा सा रोमांचित हो उठा था कि आज 1 मार्च 2018 है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्च बहुत दिनों से जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था और आप सब भी मुझे लगता है कि प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको करना चाहिए ताकि आपके अंदर वो जोश पैदा हो, वैक्यूम क्रिएट हो सके कि यहां से ज्यादा लेकर जा सके। तो अब उन जिज्ञासाओं के पूरे होने के दिन काफी नजदीक आ चुके हैं और अब हम उस महीने में एंटर कर चुके हैं जिस महीने में हम सब आमने सामने बैठकर 15 दिनों तक 90 घंटे सोच के देखिए 90 आवर्स केवल इस पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। मित्रों कैसा होगा क्या होगा ये तो आपका अनुभव बताएगा और आप सब अनुभव लेने के लिए आने को तैयार ही हैं। हाँ आगे चल करके अब आगे के जो डेली ऑडियो लेक्चर होंगे उसमें डेफिनेटली मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा संबोधित करने की कोशिश करूंगा कि आपको अपनी मानसिकता कैसे बनानी चाहिए और किस तरीके की तैयारी यहां पहुंचने से पहले आपको करनी होगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप सबसे बाद में बात करूंगा। फ्रेंड्स एक सूचना मैं आपको और देना चाहूंगा और वो ये कि कल होली है, गजेटेड हॉलीडे भी है और त्यौहार भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और आप सबकी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। खूब उमंग के साथ आप होली का त्यौहार मनाएं। नेक्स्ट डे दोस्तों शनिवार है और इसके बाद रविवार है। आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, यानी कि इस बार कंटिन्यू 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन शनिवार को आपको दूसरी चीजें उसी तरह से मिलती रहेंगी जैसी कि मिलती रही है। आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी, आपको योजना और कुरुक्षेत्र के 4 आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको वीकली क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इन सूचनाओं के बाद आइए अब हम थोड़ा सा न्यूज को देख लेते हैं और आज मुख्य विषय के तहत फ्रेंड्स हम लोग सर्विस सेक्टर पर बात करेंगे, सेवा क्षेत्र पर कुछ बातचीत करेंगे। दोस्तों न्यूज में 2 मुझे महत्वपूर्ण खबरें लगी। एक तो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अभी जो अध्ययन आया है या कह लीजिए कि जो रिपोर्ट आई है उसकी खबरें विस्तार के साथ सुनी है। मैं उनके आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये अस्थायी होती है, 3 महीने में इस तरह की एक रिपोर्ट आती है, आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये अच्छी बात भी है। दोस्तों मैं ये खासकर बताना चाहूंगा कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो सिविल सर्विस के लिहाज से आप इन्हें कैसे लेंगे, कैसे आपको लेना चाहिए। मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट छोटे छोटे आंकड़ों में उलझ जाते हैं, आशंकित रहते हैं या यूं कह लीजिए कि वो भयभीत रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये आंकड़ा भी याद कर लो, ये आंकड़ा भी याद कर लो, ये आंकड़ा भी याद कर लो। उसका नतीजा ये होता है कि उनके पास इतने ढेर सारे आंकड़ों का जमावड़ा हो जाता है कि फिर उसमें से कोई भी आंकड़ा सही तरीके से उनको याद नहीं रह पाता। देखिए हमारे दिमाग की आफ्टर ऑल एक कैपेसिटी तो है। तो मित्रों मैं खासकर आपको ये बताना चाहूंगा कि जब इस तरह के आंकड़ों का ढेर आपके सामने परसा जाता है तो देखिए वो सब जो रिपोर्ट आ रही है वो सिर्फ आपके लिए नहीं आ रही है ना, वो तो पूरे देश के लिए आ रही है। तो उसमें जो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं, जो इकोनॉमिक सेक्टर के लोग हैं, वो तो उसकी एनालिसिस करेंगे, उनके लिए वो आंकड़े बहुत जरूरी है, लेकिन आपके लिए नहीं। आपके लिए उसमें से बहुत थोड़ी सी चीजें जरूरी होती हैं। और इनफैक्ट सच पूछे तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह के डेवलपमेंट को केवल एक अवधारणा के रूप में लेते जाएं कि भाई क्या हो रहा है, तो आपके लिए उतना ही पर्याप्त होता है। यहां तक कि प्री में भी मैंने देखा है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं तो उनके भी उत्तर आप बड़े आराम से दे लेंगे। जैसे अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी अवधारणा बनती है वो इस तरीके की बन रही है कि नहीं, अक्टूबर से दिसंबर तक की जो तिमाही रही है उसमें अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले से, क्योंकि आपको मालूम है कि विमुद्रीकरण के बाद और फिर जीएसटी के आ जाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को काफी धक्का पहुंचा था और ये एक्सपेक्टेड भी था कि एक बार उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी। और अच्छी खबर यह है कि अब उसमें फिर से तेजी आनी शुरू हो गई है। ये एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और मुझे लगता है कि इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है, सफिशियंट है, ज्यादा के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों जो दूसरी खबर थी वो ये थी कि कैबिनेट ने हमारे जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसको 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, और 3 वर्षों तो कर दिया और ये अब 2019-20 तक जारी रहेगा। राइट, थोड़ा सा ऐसे समय में होना ये चाहिए कि हम रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जान लें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है। बहुत ही थोड़ी सी जानकारी, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, रोजगार सृजन यानी कि जो जिसके माध्यम से रोजगार का सृजन होता हो। देखिए रोजगार का सृजन तो स्किल डेवलपमेंट से भी हो सकता है, लेकिन यहां जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है ऋण उपलब्ध कराना, चाहे वो युवा ग्रामीण क्षेत्र का हो या चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो। यदि वह अपना कोई उद्योग लगाना चाह रहा है तो उसे 25 लाख रुपए तक का ऋण सरकार देगी, और अगर वो सेवा क्षेत्र में कुछ करने जा रहा है, सर्विस सेक्टर में, तो उसे 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा। आप दस्तकारी के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं तब भी आपको यह ऋण मिलेगा। तो इसका जो उद्देश्य है वह यही है कि युवाओं को अपने रोजगार के लिए तैयार करना कि वो अपना रोजगार कर सके। बस मित्रों एक छोटा सा इसका उद्देश्य, लेकिन बहुत बड़ी जरूरत इसकी है। तो इतना अगर आप जान लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम इससे चल जाएगा। मित्रों आइए अब मैं आज के मुख्य विषय पर बात करता हूं, और मुख्य विषय है सर्विस सेक्टर। फ्रेंड्स आपने एक खबर और सुनी होगी, और हम डीडी न्यूज पर तो इसके बारे में काफी कुछ विस्तार से आया भी था, और वो ये कि सरकार ने एक फैसला लिया है कि हमारे सर्विस सेक्टर के उसने 12 क्षेत्रों को चुना है, सर्विस सेक्टर के 12 क्षेत्रों को, जिसमें उन्होंने कहा है 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स, यानी कि ये सर्विस सेक्टर्स के हमारे चैंपियन हैं। जैसे किसी समय आपको ध्यान होगा कि उद्योगों के लिए रत्न और महारत्न की बात कही गई थी ना, उसी तरह से 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर, मतलब ये 12 सेक्टर सर्विस के वे हैं जिनमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और जो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों उसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का एक डेडिकेटेड फंड तैयार किया है जो केवल इसी के लिए होगा। डेडिकेटेड फंड का मतलब है कि जो केवल इन 12 क्षेत्रों में पर खर्च होगा। राइट, तो अच्छा होगा कि पहले हम थोड़े से इन 12 क्षेत्रों को जान लें कि सर्विस सेक्टर के 12 क्षेत्र कौन से हैं। ये दिमाग में आभास के बतौर मौजूद आपके होने चाहिए। देखिए इसमें है आईटी और आईटी सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं कि इसमें तो भारत ने कमाल ही किया हुआ है। टूरिज्म यानी कि पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी यानी जिसमें कि आपका सेवा क्षेत्र है पूरा का पूरा, जिसमें अतिथि सत्कार टाइप का आता है, जैसे होटल है, होटल हॉस्पिटैलिटी में आता है, होटल इंडस्ट्री है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, यानी कि जो मेडिकल के आधार पर जो ट्रेवल, जैसे विदेशों से भारत में बहुत अधिक इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, भारत में आयुर्वेदिक पद्धति उसके लिए भी आते हैं, केरल वगैरह में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, केरल की जो इलाज पद्धति है उसके लिए आते हैं और दूसरे इलाजों के लिए भी अब विदेशों से लोग आने लगे, क्योंकि भारत में मेडिकल बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है विदेशों की तुलना में, तो मेडिकल टूरिज्म भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। देखिए, टूरिज्म का मतलब आप ये मत लगाइएगा कि जहां केवल मौज मस्ती की बात हो रही है, टूरिज्म का मतलब है कि जिसकी वजह से लोगों के आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, वो टूरिज्म है। तो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अकाउंट एवं फाइनेंस सेक्टर, ऑडियो विजुअल जिसमें एंटरटेनमेंट आते हैं, एजुकेशन भी आता है, लॉ कानून, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, फाइनेंस एंड एजुकेशन, ये सब के सब सर्विस सेक्टर में, वो सर्विस सेक्टर हैं जिनको 12 चैंपियन में शामिल किया गया है। तो एक सामान्य सी आपको जानकारी रहे और उतने से ही आपका काम चल जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको पूरे 12 याद हो, आपको एक थोड़ी सी जानकारी मिल गई। मित्रों, आइए अब हम थोड़ा सा सर्विस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा आंकड़ों में उलझने की जरूरत नहीं होती है। सर्विस सेक्टर आप जानते हैं कि तीन क्षेत्र माने जाते हैं, एक हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जैसे खेती बाड़ी है प्राइमरी सेक्टर में आता है, और एग्रीकल्चर को माना ही जाता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर में हमारी 57% पॉपुलेशन करीब लगी हुई है। इसके बाद जो आता है वो है इंडस्ट्री सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों का क्षेत्र, और इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है वो है सर्विस सेक्टर। और सच पूछिए तो किसी भी देश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्रमशः इसी तरीके से हुआ है। हर देश पहले एग्रीकल्चर में लगा हुआ था क्योंकि पुराना सिस्टम इस तरह का था, फिर वो इंडस्ट्री में एंटर करता है और फिर वो सर्विस सेक्टर में एंटर करता है। नाम से ही पता है जो सेवाएं उपलब्ध कराता है वो सर्विस सेक्टर है। अभी मैंने आपको इतने नाम बताए हैं वो सब के सब सर्विस सेक्टर है। ये कोई चीज जनरेट नहीं करते, आपको कोई चीज दे नहीं रहे हैं, आपको सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे एक टीचर है तो आपको एजुकेशन दे रहा है, एक डॉक्टर है वो आपका इलाज कर रहा है, आपको आपकी सेवा ही कर रहा है, होटल है वो आपको कमरा दे रहा है, आने जाने की सुविधा दे रहा है, ट्रांसपोर्ट है, रेल है, चाहे वो एयरलाइंस है, तो आपको सर्विसेज ही तो वो दे रहे हैं ना, कोई चीज नहीं दे रहे हैं आपके और हमारे थैले में, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। पूरा का पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा आईटी डिपार्टमेंट इसी के तहत आता है। दोस्तों, दो तीन आंकड़े आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। पहली बात तो यह है कि अभी जो हमारा टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नियर अबाउट 54% है। यह रेंज आपको अलग अलग पढ़ने को मिल जाएगी दोस्तों, 54 से लेकर के 56% तक अखबारों में पढ़ने को मिल जाएगी, तो आप 54-55% कुछ भी मान सकते हैं हमारे जीडीपी में। सोच करके देखिए 54%, और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका मैंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 57% पॉपुलेशन लगी हुई है, और हमारे टोटल पॉपुलेशन का 29% सर्विस सेक्टर में है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। देखिए 29% सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है। बाहर से जो हमारा एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, उसमें 60% जो एफडीआई आ रहा है वो सर्विस सेक्टर में आ रहा है। देखिए कि सर्विस सेक्टर में 60% एफडीआई फ्रेंड्स। और अब एक लक्ष्य बनाया गया है या मानकर चला जा रहा है कि 2020 तक जो हमारा टोटल जीडीपी है उसमें 62% लगभग आप यूं कह लीजिए कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का हो सकता है। दोस्तों, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है, और हम जितना भी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में भेजते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है आपके आईटी का। आईटी का एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा करते हैं, लगभग 47% तक हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूं, टोटल एक्सपोर्ट की नहीं, यहां थोड़ा सा करेक्ट रखिएगा दिमाग को, कहीं ऐसा ना कि उलझ जाए। जो टोटल हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 47% के आसपास, 45-47% के आसपास कह लीजिए कि केवल आईटी का है, यानी कि आईटी, इसीलिए कहा जाता है कि भारत को एक तरह से आईटी का हब का कहा जाता है। और आप देखिए कि जो हम आईटी में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, वो देश जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली भी बहुत हम उन्नत मानते हैं। टॉप पर है अमेरिका जहां हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर है कनाडा, और इसके बाद है यूरोप की कंट्रीज। यहां हम सबसे ज्यादा अपना सॉफ्टवेयर कह लीजिए, बेसिकली जब हम आईटी सेक्टर में कह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मित्रों, ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको सर्विस सेक्टर के बारे में बताई हैं, मैं ज्यादा जानबूझ करके इसमें नहीं जा रहा हूं। अब आप देखिए कि इसमें संभावनाएं क्या हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। हम लोग बीच बीच में इस पर मित्रों बात भी करते रहे हैं कि टूरिज्म की कितनी बड़ी संभावना भारत में है, और लगातार टूरिज्म भारत का बढ़ भी रहा है। टूरिज्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये देखिए कि ऑनलाइन का कितना कारोबार बढ़ गया, कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगी। आप देख रहे हैं सारी चीजें अब ऑनलाइन होती चली जा रही हैं, और भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो सर्विस सेक्टर में कमाल कर सकती है दो दृष्टियों से। एक तो हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है, हम खुद ही अपने लिए चीजें अगर चाहे तो दुनिया भर की हमें जरूरतें हैं। दूसरी चीज है कि चूंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे सर्विस सेक्टर में अगर कहीं लोगों की जरूरत है तो वो हमारे पास श्रम कह लीजिए, जिसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे, तो हमारे पास बहुतायत में वो उपलब्ध है और सस्ते में उपलब्ध है। ये नहीं कि केवल उपलब्ध ही है बल्कि वो सस्ते में उपलब्ध है। जैसे मित्रों मैं आपको बताऊं कि आप विदेश में यात्राओं पर जाइए, फॉरेन कंट्रीज में जाइए, यूरोप वगैरह देश में जाइए, तो पता लगेगा कि आप अपना सामान खुद ही उठा रहे हैं, खुद ही ले जा रहे हैं, होटल के कमरे में भी ले जा रहे हैं, होटल के वहां कोई आपको बहरा नहीं मिलेगा कि आपके लिए खाना पहुंचा रहा है, आपकी बात सुन रहा है, नो बडीज देयर, कोई नहीं है वहां, आपको सब खुद करना है। अगर आपकी बस आ गई है तो खुद ही सामान रखिए, उस बस में एडजस्ट कीजिए, हो सकता है कि ड्राइवर भी आपकी मदद न करे कि वो आपका सामान उठा करके और डिक्की में रखवा दे, नॉट एट ऑल। और हमारे यहां देखिए कि आप घूमने जाइए और लाट साहब बने रहिए, होटल में पहुंचिए तो वहां सलाम करने के लिए आदमी खड़ा है, वो गाड़ी के आपका दरवाजा खोलेगा, सामान उतारेगा, आपके कमरे तक पहुंचाएगा, फिर कमरे से ले भी जाएगा। देखिए वो इसलिए क्योंकि लोग अवेलेबल हैं और सस्ते में अवेलेबल हैं। तो इसकी वजह से भारत में सर्विस सेक्टर की संभावनाएं अनंत बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर है हमारा, भारत के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा सशक्त इंजन बन सकता है मित्रों। तो इन संभावनाओं को लेकर के आपको इस टॉपिक पर अपनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं, दीपाली तिवारी आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, रवि प्रकाश पांडे गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं, चमकौर सिंह, सचिन यादव और गौरव सिन्हा आप बिहार से हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अंत में आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब 3 दिनों के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।